Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next, you need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
For a limited time, visit Miro.com/retro now for a free business plan trial to unlock advanced retro tools like private mode, voting, and two-way Jira syncing. That's Miro.com/retro now.
आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
सेना पर संभलकर बोले कांग्रेस और धार्मिक मसलों पर भाजपा कसे लगाम, EC की नसीहत। लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर वोटों की अपील करने और सुरक्षा बलों के नाम पर मतदाताओं को रिझाने पर चुनाव आयोग ने एतराज जताया है। आयोग ने इस सिलसिले में भाजपा और कांग्रेस को नसीहत दी है कि वे ऐसा करने से बचें। आयोग ने कांग्रेस को कहा है कि वह डिफेंस फोर्सेज का राजनीतिकरण न करे। इसके अलावा सुरक्षा बलों में सामाजिक आर्थिक विविधता के बारे में भी टिप्पणी न करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने भाजपा को भी सलाह दी है कि वह धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार न करे। निर्वाचन आयोग ने भाजपा एवं उसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया। वहीं कांग्रेस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके स्टार प्रचारक ऐसे बयान नहीं दे जिससे यह गलत धारणा बने कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से यह नोटिस भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए हैं। दोनों ही दलों से कहा गया है कि वे अपने स्टार प्रचारकों को हिदायत दें कि सेना और धार्मिक मसलों को राजनीति में न घसीटें। आयोग ने दोनों दलों को ध्यान दिलाया है कि वे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर टिप्पणियां न करें। लो आ गई खुशखबरी, आ रहा है मॉनसून, होगी झमाझम बारिश, यूपी बिहार में एंट्री कब? उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हीटवेव चलने की वजह से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मध्य प्रदेश, गुजरात में अगले 5 दिनों के दौरान हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव चलने वाली है। इसके अलावा दक्षिण भारत में 24 मई तक भारी बारिश होगी। केरल में 22 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मॉनसून की बात करें तो 31 मई को इसके केरल में दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति देखी गई। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हीटवेव की हालत रही। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी हीटवेव की वजह से काफी गर्मी रही। हरियाणा के सिरसा में सबसे ज्यादा 47.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करें तो यह साउथ अरेबियन से मालदीव, बंगाल की खाड़ी की ओर और आगे बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई को केरल में मॉनसून आ सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 10 जून को मॉनसून की एंट्री होती है। आमतौर पर कुछ इलाकों में 15 जून को भी मानसून आता है। वहीं गुजरात की बात करें तो 20 और 25 जून को कई इलाकों में मानसून आता है। राजस्थान में मानसून 30 जून को आता है और कुछ इलाकों में 5 जुलाई को यह पहुंचता है। यूपी की बात करें तो मानसून 20 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि कई इलाकों में यह 25 जून तक आता है। मौसम विभाग के मैप के अनुसार बिहार में मानसून 15 जून के आसपास आता है। जम्मू कश्मीर में 25 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून 10 जून और कई इलाकों में 15 जून को पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून के पहुंचने की तारीख 15 जून है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत सोरेन को राहत देने से एससी का इनकार, क्यों नाराज भी हो गए जज, खूब सुनाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब यह साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा, आपका आचरण काफी कुछ कहता है, हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, याचिका के गुंडोश पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ही नुकसानदेह होगा। तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। सिब्बल ने यह कहकर सोरेन का बचान किया कि वह हिरासत में है और अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं की उन्हें जानकारी नहीं है। इस पर बेंच ने सिब्बल से कहा, आपका आचरण बेदाग नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि वह सोरेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड हाई कोर्ट ने सही ठहराया है और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का जिक्र करते हुए अपने लिए भी राहत की मांग की थी। इजराइल को करारा झटका, स्पेन समेत 3 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, टूटे कूटनीतिक रिश्ते। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला बोल रहे इजराइल को करारा झटका लगा है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जैसे 3 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर ने कहा कि इजराइल के हित में भी यही है कि 2-स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि इजराइल को भी एक देश के तौर पर मान्यता मिले और ऐसे ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बंटे फिलिस्तीन को भी एक देश मान लिया जाए। इससे विवाद खत्म हो जाएगा और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी। नॉर्वे के पीएम के बयान के बाद अब स्पेन और आयरलैंड ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। नॉर्वे के पीएम का कहना है कि हम 28 मई को फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे तो फिर मध्य पूर्व में शांति नहीं आएगी। नॉर्वे के ऐलान के तुरंत बाद आयरलैंड के पीएम सिमोन हैरिस ने कहा कि उनका देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। हैरिस ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला लिया है। हम सभी यह देखेंगे कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए कौन से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि कुछ और देश हमारे साथ आएंगे और इसराइल को मान्यता दी जाएगी। अगले कुछ सप्ताह में ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने बुधवार को कहा कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग 28 मई को होगी। इस दिन हम फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव पारित करेंगे। आरआर वर्सेस आरसीबी मैच पर आतंक का साया, विराट कोहली की सुरक्षा को खतरा, 4 लोग हुए गिरफ्तार, रिपोर्ट्स। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बुधवार को आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर खेला जाएगा। हालांकि इस मैच से पहले एक बुरी खबर सामने आई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की सुरक्षा को खतरा होने के कारण आरसीबी ने प्रैक्टिस सेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है। इस मैच से पहले आतंकी संदेह में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर बीसीसीआई या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2024 एलिमिनेटर से पहले अपना एकमात्र अभ्यास सत्र रद्द कर दिया था। आरसीबी को नॉकआउट मैच की तैयारी के लिए मंगलवार को अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज मैदान में अभ्यास करना था, लेकिन टीम ने बिना किसी आधिकारिक कारण के इसे रद्द करने का फैसला किया। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उसी स्थान पर नेट प्रैक्टिस की। हालांकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण आईपीएल नॉकआउट मैच की पूर्व संध्या पर असामान्य है। मैच से पहले दोनों टीमें उसी मैदान पर प्रैक्टिस करती हैं, जहां मुकाबला होने वाला होता है। लेकिन राजस्थान और बेंगलुरु के मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसी मैदान पर मंगलवार को कोलकाता और हैदराबाद के बीच आईपीएल क्वालिफायर 1 खेला गया था और इस वजह से राजस्थान और बेंगलुरु के लिए ये उपलब्ध नहीं था। गुजरात कॉलेज का मैदान आरसीबी और आरआर की टीमों को विकल्प के रूप में दिया गया था। पुलिस ने कथित तौर पर चारों आरोपियों के ठिकाने की तलाशी के बाद हथियार, संदिग्ध वीडियो और टेक्स्ट संदेश बरामद किए।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. In Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. In Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
For a limited time, visit Miro.com/brainstorm now and get a free business plan trial to unlock even more brainstorming tools like private mode and voting. That's MIRO.com/brainstorm now.